वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार।
मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के वचन की संगति में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि हम आज के वचन में आगे बढ़ें, उस पर विचार विमर्श करें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे और प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, उस पर विचार करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आँखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, हमें एकाग्रतापन दें ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो आपका जीवित वचन हमें से प्रत्येक के हृदय से बोलने और बातचीत करने पाए। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम नहीं जानते हैं कि हमारे श्रोता भाई बहन किस परिस्थिति में हैं, लेकिन आप सारी बातों को जानते हैं। आज जब हम आपके वचन से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप उनसे हर एक से बातचीत करें। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जो अपने जीवन में दुखी और निराश हैं, चिंता और परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, तंगी हालत में हैं। पिताजी, आप उन पर अपनी अनुग्रह प्रदान करें और आज के इस समय में आप उनसे विशेष रूप से बातचीत करें ताकि वे इस बात को समझ सकें कि उनके बीच में एक सहायक है जो पवित्र आत्मा है जो उनकी सहायता करता है। प्रभु, आपके प्रेम में बलवंत होने के लिए आप उनकी सहायता और मदद करें। इस समय हर एक भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि आज आप हमसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देख रहे थे कि यीशु की बातें तीन बार बीच में काटी गई थी। पहले तो पतरस ने, वह भी यीशु के साथ जाना चाहता था। फिर थोमा ने, वह जानना चाहता था कि मार्ग कहाँ है। तब हम देखते हैं फिलिपुस ने, वह परमेश्वर को देखना चाहता था। और यहूदा ने, जो स्क्रूति न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तीन बातें जो यीशु के रुकावट के कारण बन रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यीशु ने हमें एक प्रतिज्ञा दी है कि हम उसके नाम से जो भी मांगेंगे वह देगा, परंतु शर्त है कि हम उसकी आज्ञा माने, और आज्ञा मानना प्रेम का प्रमाण है। प्रेम करने वाले को अपना दर्शन देने की प्रतिज्ञा भी यीशु ने की है, जो वास्तव में पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के वचन में है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि शिष्य आनंद करे कि वह जा रहा है, अन्यथा पवित्र आत्मा नहीं आएगा कि उसके द्वारा यीशु हम में अंतर्वास करे। मेरे मित्रों, अध्याय 15 में यीशु कहता है कि सच्ची दाखलता वही है और विश्वासी डालियां हैं जो उसमें रहकर ही फलती है। तो आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं। अध्याय 14 के अंतिम पद के अंत में यीशु कहता है, उठो यहां से चलें, अर्थात वह ऊपरी कमरे में नहीं था। अध्याय 17 में उसकी प्रार्थना है जो वह गतसमनी में प्रवेश करने पर करता है। अतः अध्याय 15 और 16 जैतून पर्वत के मार्ग का दृश्य है। अनेकों ज्ञाता कहते हैं कि यह किद्रोन घाटी या जैतून पर्वत के पार्श्व का स्थान है, क्योंकि वहां दाग की बारी थी। अंग्रेज टीकाकारों के अनुसार यीशु व्यवस्था पालन करते हुए मंदिर के पास जा रहा था। मंदिर के द्वार अति सुंदर थे और पर्यटक आकर्षण का केंद्र थे। उन पर अंगूर की दाखलता की नक्काशी की हुई थी, क्योंकि दाखलता बाइबल में इसराइल का प्रतीक है। भजन संहिता 80 उसके 8 और 9 में इसराइल को दाखलता की उपमा दी गई है कि परमेश्वर ने उसे मिस्र से लाकर अन्य जातियों को हटाकर उसे लगाया। यशाया नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 और 7 पद में वह इसराइल को सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी कहता है। यर्मिया 2 उसके 21 पद में वह इसराइल को अच्छी दाखलता कहता है। और होशे कहता है कि इसराइल खोखली दाखलता है, होशे 10:1 में। आइए अब हम आगे बढ़ें और देखें कि यीशु सच्ची दाखलता है और शिष्य उसकी डालियां हैं। योहन्ना रचित सुसमाचार 15:1 में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि सच्ची के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है जो नकली या बनावटी ना हो। इसी शब्द का प्रयोग वहां किया गया है जब यीशु को सच्ची ज्योति, सच्ची रोटी कहा गया है। शिष्य पुराने नियम की समझ में अभिभूत थे, अतः वह इसराइल को दाखलता मानते थे जिसके वे अंग थे। यीशु के कहने का अर्थ यहां पर था कि अब उन्हें इसराइल राष्ट्र से अधिक यीशु में जुड़ जाना है, इसके अपेक्षा कि वे इसराइल के धर्म तंत्र में लीन रहें, जो एक आमूल परिवर्तन है। मेरे प्रियो, आज के परिप्रेक्ष्य में इसका अभिप्राय यह है कि धर्म, प्रथाओं और संस्थाओं में आस्था रखने से अधिक वरन अनिवार्य महत्व यह है कि यीशु में बने रहें। हमें यीशु के साथ पहचान बनाना है। हम ज्यों ही मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, ज्यों ही हमारा नया जन्म हो जाता है और हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। लिखा है कि मेरा पिता किसान है, यह भी एक नई बात है, क्योंकि पुराने नियम में और यीशु के दृष्टांतों में परमेश्वर को दाख की बारी का स्वामी कहा गया है। यीशु के कहने का अर्थ है कि वह सच्ची दाखलता है और पिता उसका संरक्षक है। पुराने नियम की भविष्यवाणियों के अनुसार प्रभु यीशु परमेश्वर की देखरेख में एक कोमल पौधे की नाई और सूखी भूमि में पल्लवित जड़ की नाई उठेगा। यह सत्य ही है कि अनेक बार परमेश्वर ने उसके जीवन में शैतान के विरुद्ध हस्तक्षेप किया था। पिता परमेश्वर ही दाखलता को संभालता है, अतः उसकी डालियां परमेश्वर की सुरक्षा में रहती हैं। डालियां दाखलता से क्यों जुड़ी रहती है? क्योंकि उसे फल लाना है, अर्थात फल लाने के लिए। यूहन्ना 15:2 में लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मेरे मित्रों, यहां पर लिखा है मुझ में, अर्थात मसीह में, यही उद्धार है। सब प्रभावी शब्द जैसे पश्चाताप, बलि, मेल मिलाप, उद्धार एवं मुक्ति आदि सब छोटे से वाक्यांश में समाये हुए हैं। मनुष्यों के केवल दो ही वर्ग हैं, एक उनका जो मसीह में है, अर्थात जिन्होंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वे परमेश्वर की संतान है। यह नया जन्म है जो पवित्र आत्मा से प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा आप में वास करता है और आपको बपतिस्मा देता है। इस प्रकार विश्वासी मसीह की देह में अभिन्न अंग बन जाते हैं। यीशु के कहने का अभिप्राय यही था जब उसने कहा, जो डाली मुझ में है। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु इस अध्याय में न तो उद्धार की चर्चा कर रहा है और न ही उद्धार के मार्ग की, वह उद्धार प्राप्त जनों से फल लाने की चर्चा कर रहा है, और यही मुख्य विषय भी है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, अर्थात उस स्थान से हटा देता है जहां फलों का प्रकट होना आवश्यक है। पद 6 में वह इसको स्पष्ट करता है। हम पद 3-5 पर मनन के लिए अभी थोड़ा रुकते हैं। यूहन्ना 15:6 में लिखा हुआ है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। प्रिय मित्र, यहां पर ध्यान दीजिए कि इस पद से आपके मन में नरक का विचार ना आए। नहीं, यहां यीशु उद्धार पाए हुए द्वारा फल लाने की चर्चा कर रहा है। ये फल क्या है? मेरे विचार में यीशु के कहने का अर्थ है मनुष्यों को यीशु में लाना। जी नहीं, जैसा कि अधिकांश जन सोचते हैं, यहां फल से अभिप्राय है आत्मा का फल। जैसे पौलुस गलतियों की कलीसिया को लिखता है 5:22-23 में, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। मेरे मित्रों, विश्वासी के जीवन के फल यही हैं। प्रभावी प्रार्थना सदाकालीन फल और व्यापक आनंद भी है। हम यूहन्ना 15 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह एक प्रभावी प्रार्थना है। हम आगे देखते हैं यूहन्ना 15 उसके 8 पद में लिखा हुआ है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सदाकालीन फल की आवश्यकता है। हम यूहन्ना 15 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यह है व्यापक आनंद। जिस मनुष्य में ये फल होंगे, उसके जीवन से अनेक मनुष्य परमेश्वर को जानेंगे, जिसका परिणाम मनुष्यों को मसीह में आना होगा। जो डाली फलती नहीं, उसे वह काट डालता है। इसका अर्थ उद्धार से वंचित होना नहीं है, इसका अर्थ है परमेश्वर को प्रयोजन से बाहर हो जाना। जैसे आज अनेक प्रभावी प्रचारक विस्मृत हो चुके हैं। कभी कभी यह काट डालना सांसारिक मृत्यु भी होती है। मेरे विचार में जब यूहन्ना अपनी पहली पत्री उसके 5 अध्याय के 16 पद में कहता है, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, तो उसका अभिप्राय शारीरिक मृत्यु से ही है। हनन्याह और सफीरा को आरंभिक कलीसिया से इसी प्रकार काट डाला गया था। शारीरिक रीति से उन्हें काटने की बात नहीं है, लेकिन उनकी मृत्यु की बात है, क्योंकि वह कलीसिया फलवंत कलीसिया थी। मेरे प्रियो, इसमें संदेह नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवन में छटनी करता है, जिससे हमें कष्ट होता है, परंतु इसका मूल अर्थ है शोधन, अर्थात हमारी शुद्धिकरण। हमें कष्ट इसलिए होता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम परमेश्वर के जितना अधिक निकट रहेंगे, उतना अधिक हमारा कष्ट कम होगा, क्योंकि वह हमारी चिंता करेगा और अपनी आशीषें हमारे जीवन में उंडेलता रहेगा और ये फल बढ़ते ही जाएंगे। एक बार हम स्कूल के समय नाले के किनारे मछली पकड़ने चले गए। यद्यपि हमने मछली तो एक नहीं पकड़ी, परंतु हमने पूरा आनंद लिया। अब स्कूल की छुट्टी होने से पूर्व हम अपना बस्ता लेने के लिए अपनी कक्षा में पहुंचे, तो वहां हमारे पीछे पीछे हमारा प्रधानाध्यापक था। अब हमारी पिटाई तो होनी ही थी। मेरा एक मित्र कई बार पिट चुका था, अतः उसने राय दी कि पिटते समय दूर भागने की अपेक्षा अधिक निकट आने से चोट कम लगती है। मैंने ऐसा ही किया। मैं प्रधानाध्यापक से बहुत निकट आ गया, जिससे कि उनकी कलाई मुझे छू रही थी। इस प्रकार मुझे चोट नहीं लगी। मेरे मित्रों, मेरे लिए यह परामर्श बहुत लाभकारी रहा। जब भी परमेश्वर हमारी ताड़ना करे, उसके बहुत निकट आ जाने से कष्ट कम हो जाता है। उसकी ताड़ना का अर्थ यह नहीं है कि वह हमारा विरोधी है, वह हमें फलवंत बनाना चाहता है। हम शिकायत करते हैं और उससे दूर हो जाते हैं, जिसका परिणाम कष्ट होता है। यदि हम उसके और अधिक या उसके निकट आ जाएं, तो कष्ट नहीं होगा। मेरे मित्रों, इसराइल में दाख की बारे में काम करने वाले अंगूरों को भूमि पर से उठाकर चट्टानों पर रखते हैं और उन्हें धोते हैं कि वे अच्छी तरह बड़े हों। यीशु इसी प्रकार की शोधन के कार्य के बारे में कह रहा है कि वह कैसे शोधन करता है। अब हम फिर से वापस लौटते हैं और यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ते हैं। लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन से शोधन होता है। पत्रस अपनी पहली पत्री 1 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखता है, जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे प्रियो, वचन के द्वारा हमें पापों से धोया गया है, परंतु हम इस संसार में रहते हुए अशुद्ध हो जाते हैं। अतः हमें लगातार वचन के शोधन की आवश्यकता है। इसी कारण हमें बाइबल पढ़ते रहना चाहिए। भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 119 उसके 9 में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यह सच है, जब आप वचन पढ़ेंगे तो आप उससे सावधान हो जाएंगे और उसके अनुसार पवित्र जीवन जिएंगे। यदि आप वचन नहीं पढ़ेंगे, उस पर समय नहीं देंगे, तो यह निश्चित है कि आप उसके अनुसार शुद्ध नहीं हो पाएंगे। आगे हम पाते हैं कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन और उसके अनुरूप जीवन रखने से परमेश्वर के साथ संबंधों की सच्चाई प्रकट होती है। कुछ लोगों का मानना है कि परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार प्राप्त करना ही पर्याप्त है, अर्थात काफी है। हम अपना जीवन कैसे भी जी सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने वचन से हमारा अंतचार प्रकट करता है, अर्थात आंतरिक बातों को प्रकट करता है, हमें सिखाता है और हमें बताता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर कष्टों के द्वारा हमें उसके वचन की ओर लाता है, जिससे कि हम उसके लिए उपयोगी बने रहें। भजनकार कहता है 119 उसके 67 में, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। भजन संहिता 119 उसके 71 में लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे भले के लिए ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। वे जो परमेश्वर के कामों में आगे हों परंतु वचन का अध्ययन नहीं करते, वे परमेश्वर के कार्यों और मसीह के उद्देश्यों के लिए अत्यधिक घातक होते हैं। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़कर जीवन में अपनाना है और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करना है, क्योंकि इस संसार में हम रहते हैं। संसार पाप से घिरा हुआ है, प्रतिदिन हमसे गलतियां होती है, लेकिन इसे हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं? अपने जीवन को हम कैसे पवित्र रख सकते हैं? इसका कोई दवा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, हमें सुधारता है, हमें तैयार करता है। इसलिए जब हम कष्ट में होते हैं तो हम प्रभु के और निकट आते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है वह उसे ताड़ना भी देता है। कई लोग इसे गलत समझते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, फिर ऐसा वह क्यों करता है? जी नहीं, क्या आप अपने बच्चों को छड़ी नहीं मारते? क्या आप उन्हें नहीं डांटते यदि वे गलत करते हैं? जी हाँ, आप करते हैं। इसलिए नहीं कि आप उनसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन इसलिए कि आप उनसे प्रेम करते हैं ताकि वह गलती न कर बैठे। मेरे मित्रों, आज प्रभु भी मुझसे और आपसे प्रेम करता है। वह चाहता है कि आप शुद्ध हों, आप कष्टों से बाहर आएं, ताकि आप उससे प्रेम करें और वह फल आपके जीवन में दे दे और आप उससे हमेशा जुड़े रहें। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको निर्णय लेना है और जांचना है कि हम क्या उसकी डालियां हैं, क्या हम वो फल देने वाली डालियां हैं, क्या हमारे अंदर वो फल पाए जाते हैं, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, नम्रता, दीनता और संयम। यदि नहीं, तो आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसे सहायता मांगे कि वो हमारी सहायता करे, ताकि हम वो फल अपने जीवन में देख सकें और कहने पाए कि सच्ची दाखलता यीशु है और हम उसी में बने रहें और फल लाने के बारे में वचन के शोधन द्वारा मनन करते रहें। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम इससे प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु हम सब की सहायता करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, क्योंकि आप सच्ची दाखलता हैं और हम डालियां हैं। आपका वचन कहता है कि यदि हम उसमें बने रहेंगे तो आप हमें फल से भरेंगे, और आपका वचन यह भी कहता है कि जो उसमें बना नहीं रहता, जो उसमें फल नहीं लाता, वह काट डाला जाता और आग में झोंक दिया जाता है। पिताजी, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी गलतियों को हमारे जीवन से निकाल करके हमसे अलग कर दें, हमें अच्छी दाखलता बना दें, अच्छी डालियां बना दें, ताकि हम आप में जुड़े रहकर, आपके नजदीकी में रहकर उन आशीषों को पा सकें और आपको महिमा दे सकें। प्रत्येक श्रोता भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, प्रत्येक के जीवन में आप कार्य करें, उनके जीवन को आप जानते हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें। धन्यवाद पिताजी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
Just